میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصحاب کہف، سورہ کہف میں ان کا ذکر موجود ہے۔ افسوس نامی شہر کے یہ بہت ہی معزز شریف اور ایماندار یہ لوگ تھے، یہ نوجوان تھے اور ایماندار بھی تھے، نیک بھی تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ یہ نیک نوجوان اصحاب کہف اس کے ظلم سے بچتے ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے غار میں یہ گئے تھے۔ یہ بادشاہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے غار کی طرف گئے تھے اور وہاں جا کر سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ یہ سوئے رہے۔ بادشاہ کو جستجو ہوئی، وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے جب پتا چلا کہ غار کے اندر اصحاب کہف ہیں، تو اسے غار کو ایک سخت دیوار کھینچ کر بند کروا دیا تاکہ وہ اسی میں ہی ان کی جان نکل جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی لوگ جو تھے، یہ کام ان کے سپرد کیا گیا اور انہوں نے جا کر یہ دیوار کھڑی کرنی تھی۔ اور ان لوگوں میں ایک نیک شخص بھی تھا جو دیوار بند کرنے کے لیے، دیوار لگانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ کہ کیوں یہاں آئے ایک تختی پر لکھ کر وہاں پر اس نے محفوظ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ایسی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی گئی تھی۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد دقیانوس تو مر گیا، زمانہ گزرتا گیا، وقت آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، ریاستیں بدلتی گئیں۔ ایک نیک بادشاہ کی جب حکومت آئی جس کا نام بدرس تھا، اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا اور لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رو رو کر کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی عطا فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کے پاس ہو گیا کہ یار، یہ غار ہے، یہاں میں آرام کیا کروں گا؟ تو اس نے وہ جو دیوار تھی وہ دیوار توڑوائی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ہیبت طاری ہوئی اور جو دیوار گرانے والے تھے وہ سارے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالی کے حکم سے حشاش بشا، چہرے تر و تازہ، یہ وہاں اٹھے 300 برس سے زیادہ۔ یہ اٹھے، ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا، املی خا کو، کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیے۔ और वो जैसे शहर में गए तो शहर के अंदर बड़ा इस्लाम और दीन और एक माहौल बना हुआ था। उसको ये अभी तो हम सोए थे, उठ के बाहर निकले, ये रातों रात क्या तब्दीली आ गई। फिर वो जगह वो सामान लेने के लिए गया, सामान लेने गया तो उसने वो रकम दी, सिक्का कहलाता था। जब उसने वो सिक्का दिया तो जिसको उसने सिक्का दिया, पैसे दिए, उसने कहा ये कौन से पैसे हैं? उसको तो पता ही नहीं था कि ये कौन से, 300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। तो यूं बात चली कि हो ना हो ये कोई लोग है और इनके हाथ का खजाना लगाए। अब बात पहुंचते पहुंचते वहां के गवर्नर तक पहुंची, उसने भी कहा कि भाई बताओ खजाना, बोल खजाना कहां से लगाए, हम तो इस वजह से सोए थे और मैं तो ये सब बताया। तो अच्छा उससे कहा ये बताओ दक्कियानुस कहाँ है, उसकी क्या पोजीशन है? बोलो कौन दक्कियानुस, इस तो जमीन में कोई भी दक्कियानुस बादशाह नहीं है। तो अब उसने सारे वाक्यात बयान किए कि ऐसा बादशाह हम उसके जुल्म से बचते हुए गार में गए और यूं हम तो सारे हैरान में। अब वो जो गवर्नर साहब थे जो बड़े थे वो गए अपने साथ सारा वो लश्कर लेकर कि भाई देखे क्या हुआ। अच्छा ऊपर जो दूसरे इनके साथी थे उन्होंने देखा कि लगता कि दक्कियानुस आ गया फौज लेकर और हमारा से पकड़ा गया। तो वो अपनी इबादत और नेकियों में मसरूफ हो गए, थे बड़े नौजवान नेक थे। जब वो आए आकर जब देखा सारा माजरा तो फिर उनको पता चला, फिर वो संदूक खोला तो उसमें से वो सर हिस्ट्री निकली इनकी जो वो लिख कर डाल दी थी पहले से ही। फिर वो बादशाह के पास ले गए कि हुजूर ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। फिर बादशाह आया, बादशाह ने सारा अपने साथ लोग लाए। बादशाह ने जब सारा माजरा देखा तो बादशाह ने अपने रब का शुक्र अदा किया और इस वक्त उसकी कौम को बताया कि 300 साल से ज्यादा अरसे तक जो सोए रहे ये जब उठे हैं तो देखो इनके जिस्म तरोताजा है। तो गोया के एक मतलब एक ऐसा फितना था, उसके लिए अल्लाह पाक ने उस बादशाह, वो नेक बादशाह था, उस बादशाह के अल्लाह ने दुआ कबूल की और ये एक खूबसूरत मंजर मखलूक ने देखा कि अल्लाह पाक इतने बरसों तक उसने नींद दी, जब ये उठे हैं तो इनकी जवानियां सलामत है, इनके चेहरे सलामत है, ये तरोताजा है, जैसे कि अभी ये सोए और थोड़ी देर के बाद उठे हों। ये कौन थे? ये नौजवान थे। असहाबे कहाफ कौन थे? ये प्यारे सामने ये नौजवान थे। इन्होंने अपनी जवानी में अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत के लिए इन्होंने ये सारा स्टेप उठाया था। आज अगर ये वाकया जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए कि वो एक जालिम बादशाह, कुफर की तरफ बुलाने वाला, शिर्क की तरफ बुलाने वाला, जुल्म की तरफ बुलाने वाला, उससे बचकर इन्होंने किस तरह अपने दीन को बचाने की कोशिश की। फितनों का दौर, उस फितनों के दौर में अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना और उसके बचाने की कोशिश करना, प्यारे इस्लाम भाइयों ये इंतहाई जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई फितना हमारे ईमान को और हमारे दीन को ही ले डूबे। मैं अपने नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा मेहरबानी करें, हम सबको अल्लाह ताला से डरना चाहिए। छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, हर मुसलमान को चाहिए कि खास वो फितरों के दौर में अपने आप को यूं आज़ाद घुमाने के बजाय अपने दीन की हिफाजत की कोशिश करे और ऐसे माहौल में रहे जहां उसका दीन और उसका ईमान महफूज रहता है। दीन और ईमान से ज़्यादा कीमती शे कोई भी नहीं, ईमान से ज़्यादा कीमती शे कोई भी नहीं। और जहाँ हर तरफ लुटेरे फिर रहे हों वहाँ इतना कीमती खजाना बंदा कितनी हिफाजत के साथ रखता है इसका अंदाज़ा कर लेना चाहिए। तो अल्लाह पाक हम सबको नेकी करने की तौफीक अता करे, आपके मेरे ईमान की हिफाजत करे। क्या है नौजवान इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहन है, क्या मर्द क्या औरत, सबको चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करें और अल्लाह पाक से डरें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुदा ना खासा ऐसी बात हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारे जहन में बैठ जाए और खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि हमारा दीन हमारा ईमान ये ज़ाया हो जाए। अल्लाह पाक आपके मेरे दीन की, आपके मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेकी तकवा परहेजगारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जवानियों को अल्लाह पाक हमें अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे नौजवानों का हाल बहुत बुरा है। ये मैं अपने नौजवानों से भी डिस्कस कर रहा हूँ कि घर के बड़े बूढ़े भी हमारे नौजवानों के लिए सुध परेशान है कि यार इनका बनेगा क्या, ये जाएंगे कहाँ, ये करेंगे क्या। मैं एक जगह अथॉरिटीज के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा हमारा नौजवान नशे का आदि हो चुका बदकिस्मती के साथ, और बड़ी तादाद में करोड़ों करोड़ों नौजवान नशा करते हैं, करोड़ों करोड़ों नौजवान शराबें पीते हैं। अल्लाह की पनाह, नौजवानों को लोग कहते हैं ये कौम और मिल्लत के मुस्तकबिल हैं। भाई मुस्तकबिल अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता, किसी और को क्या खड़ा करेगा, वो खुद ही लड़खड़ा रहा है, वो खुद ही बहक रहा है, वो किसी को क्या रास्ता बताएगा। मेरे वो नौजवान इस्लामी भाई जिनको अल्लाह ताला ने किसी फितने से बचाया हुआ है, शराब से बचाया हुआ है, जुए से बचाया हुआ है, बदकारी से बचाया हुआ है, किसी इस तरह के और फितनों से अल्लाह ताला उसको बचाया हुआ है, वो उन नौजवानों को देखे जिन फितनों में मुब्तला हो चुके हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि हम नशे में चले जाएंगे, उन्हें नहीं पता था हम शराबी बन जाएंगे, उन्हें नहीं पता था हम जुआरी बन जाएंगे, उन्हें नहीं पता था कि हमें इन गुनाहों की लत पड़ जाएगी, उन्हें नहीं पता था कि हम यू गैंग में आ जाएंगे। यानी मैंने तो उसकी जो रिसर्च की है, बड़ी तादाद गैंगस्टर हो चुकी है और बड़ी तादाद गैंगस्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है। इनके जरिए ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, इनको ड्रग्स मिलाया जाता है, फिर इनके केसेस बनाए जाते हैं, फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है, इनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, इनकी मूवीज बनाई जाती हैं। और ये घर में भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, घर में कहेंगे तो घर में भी उनको पता है कि घर में हाल क्या होना है। घर में चोरियां हो रही होती हैं, ये बाहर पे डकैतियां मार रहे होते हैं, बाहर से चोरियां कर रहे होते हैं, लूट मार कर रहे होते हैं, मस्जिद क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जा रहे होते हैं और दलदल में धस रहे होते हैं। आखिरकार अब इनके पास दो तीन रास्ते रह जाते हैं बदकिस्मती के साथ, फिर ये नौजवान लड़के और ये नौजवान लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हराम मौत मरने की तरफ जाते हैं। इनके पास ऑप्शन बजाय कोई नहीं रहता, जबकि खुदकुशी सुसाइड ऑप्शन नहीं है, ये तो और मजीद हलाकत है कि बंदा फिर इस हराम मौत के बनने के बाद कियामत तक कैसे अज़ाब बर्दाश्त करेगा। अल्लाह की पनाह। तो जो इस वक्त इस तरह अल्लाह की रहमत से जो बचे हुए, मैं पहले तो उनसे डिस्कस कर रहा हूं कि प्लीज कहीं मत जाइए, हालात बहुत खराब है, अपने अंदर को हिम्मत पैदा करें, ताकत पैदा करें और खुद ही अपनी जवानी को अपने रब की इबादत में मसरूफ कर दें। ये नौजवान ही थे असहाबे कहफ, ये नौजवान थे, एक बड़ी तादाद सहाबा कराम की जो नौजवान थी, जवान थी, अल्लाह पाक की राह में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ उन्होंने जिस तरह इस्लाम और दीन की खिदमत की। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का नाम आपने पढ़ा होगा, तारिक बिन जियाद का नाम आपने सुना हुआ होगा, बड़े बड़े बुजुर्गों का औलिया कराम का नाम सुना होगा, खुद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ले 17 साल की उम्र में जीरान से बगदाद तशरीफ लाए थे इल्मे दीन हासिल करने के लिए। इस तरह और बुजुर्गान दीन, ये लाखों लाख करोड़ों औलिया कराम गुजरे हमारे, लाखों मुहद्दिसीन कराम गुजरे और एक बड़ी तादाद मुफस्सिरीन की गुजरी, उलमा की गुजरी, क्या इन्होंने बुढ़ापे में जाकर इल्मे दीन हासिल किया था? करोड़ों हमारे हुफाज आज भी रूए जमीन पर मौजूद है, क्या ये बुढ़ापे में जाकर इस करते थे? आज आपकी मस्जिद के अंदर कई हाफिज साहब मिलते हैं, नौजवान है ना, क्या बचपन से ही इनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी और ये कुरान हिफ्ज करने में लग गए? ये नौजवान, इन्हें बचपन से अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इन्होंने दरस निजामी करके आलिम बनना शुरू कर दिया, कोई मुहद्दिस बन गए, कोई मुफस्सिर बन गए, कोई क्या बन गए, कोई क्या बन गए। भाई ये कौन थे? इनका रोजगार नहीं था क्या? इनका कारोबार नहीं था? मांगकर तो कोई भी नहीं खाता था क्या? इनकी फैमिली नहीं थी? मगर दीन की जिस तरह खिदमत हुई और ये नौजवान पढ़ पढ़ कर आगे बढ़ते चले गए और हमें वो कुछ करके गए, वो कुछ लिख कर गए कि आज आने वाली नस्लें इनके लिखे हुए और इनके बोले हुए से फायदा उठा रही है। हम खुद बयान करते हैं इनका लिखा हुआ, इनका बोला हुआ, 30-30 साल, 35-35 साल के उलमा आप नहीं देखे? मैं अपने नौजवानों से पूछता हूँ, ये 35 साल और 30 साल के जो उलमा हैं, 40 साल की जो मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने 15 साल मुफ्ती बनने में इनके 15 साल लग गए, इसका मतलब ये 20 साल 22 साल की उम्र में ही पढ़ने गए थे? अच्छा, ये आपको भी पता है कि ये वो जगह है तालीम की जहां बंदा गैंगस्टर नहीं बनता। आलिम बनना, हाफिज बनना, मुफ्ती बनना, याशिकाने रसूल के वो इदारे हैं जहां आदमी गैंगस्टर नहीं बनता, ड्रग्स माफिया के हाथ में नहीं चढ़ता, शराबी नहीं बनता, जुआरी नहीं बनता, बदमाश नहीं बनता, बल्कि ये वो जगह है जहां से अल्लाह ताला की रहमत से ये अल्लाह के वली बनकर लोगों में जाहिर होते हैं। वहां से नेक बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, परहेजगार बनते हैं, माँ बाप के इताअत गुजार बनते हैं। काश 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 हम वालिदैन अपने बच्चों के लिए इन जगहों का इंतखाब करते। हमने खुद ही अपने बच्चों को सम टाइम कीचड़ में डाला होता है, वो कहते बेटा चीटों से बचना, चीटों से। अरे भैया कहां से चीटों से बचेगा, पूरे का पूरा रास्ता कीचड़ से निथड़ा हुआ है। इस लिथड़े हुए रास्ते में आदमी कीचड़ के चीटों से खुद को कैसे बचाएगा। जो रास्ते थे उम्दा साफ सुथरे, उनका तो हमने इंतखाब नहीं किया। और आज बदकिस्मती के साथ माँ बाप भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, हमारा भी यही हाल है। अफसोस हो रहा होता है नौजवानों की कैफियत देकर, नौजवानों के हालात देकर, इनका इनके माँ बाप के साथ एटीट्यूड, माँ बाप के साथ रवैया देकर अफसोस हो रहा होता है। आपको भी हो रहा होता होगा, मगर वो कहते ना पछताए क्या हो जो चिड़िया चुग गई खेत, खुद का दारा इलाजे नैस, अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं होता। अजीब व गरीब किस्म की कंपनीज बन गई। हमारी बेटियां किस कदर आउट ऑफ वे चली गई हैं, हमारी बेटियां चलेंगी आउट ऑफ वे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि नहीं मेरे साथ नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये, हम ये सोचते मेरे साथ नहीं होगा। कैसे हम सोचते हैं मेरे साथ नहीं, जिनके साथ वो भी ये सोचते थे कि हमारे साथ नहीं होगा। हो गया उनके साथ, ना होने की चीजें हो गई उनके साथ, उनको भी ये टेंशन शुरू में नहीं था। जब हुआ तब तो जैसे कहते यार मैं मीठा खाता हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। जब होगा तब पूछेंगे शुगर क्या होती है, मैं तो सिगरेट पीता हूं मुझे तो कोई कैंसर नहीं हुआ। जब होगा तो पूछेंगे फिर कैंसर क्या होता है, माज़ा अल्लाह आफियत अता करे, तो नहीं होगा। लोग बेबाक होके कर रहे होते, मगर जिनको हुआ तो है ना, मिसाल तो यही दी जाती है ना, अगला सिगरेट पीता था कैंसर हो गया, अगला शराब पीता था गुर्दे फेल हो गए, अगला ये काम करता था ये हो गया, हमें बताया जाता है ना, मेडिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें डराया जाता है ना कि भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा। कोई है जो कहता मैं शराब पीता था मेरा गुर्दा पहले से ज्यादा अच्छा हो गया, मैं सिगरेट पीता था पहले से ज्यादा मेरे में एनर्जी आ गई है? कभी नहीं होगा, माइनस में ही जा रहा है वो, मगर उसको यकीन नहीं आता क्योंकि वो उसको भी इससे फेस नहीं किया है। स्पेशली मेरे नौजवानों, अपने आप को अल्लाह की राह में दे दो, इबादत की तरफ आए, इबादत अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मियां को बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुबह हदीस नहीं हदीसें सुनाने जा रहा हूं, हाय हाय आका के फरमान सुनाने जा रहा हूं, मुस्तफा करीम का इरशाद सुनाने जा रहा हूं। हमारे आका व मौला मक्की मदी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे फरमान सुनिए और अपनी जिंदगियों को तब्दील करने की नीयत कीजिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जवानी में इबादत करने वाले नौजवान को बुढ़ापे में इबादत करने वाले बूढ़े पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुरसलीन को तमाम नबियों पर। यह हदीस नौजवानों के लिए बयान हुई ना। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस नौजवान ने लज्जत दुनिया और इसके ऐश और इशरत को छोड़ दिया और अपनी जवानी में अल्लाह की इताअत यानी फरमाबरदारी की जानी पेशकदमी की यानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ चला, तो अल्लाह पाक उस खुश नसीब नौजवान को 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सिद्दीक या औलिया कराम के सबसे बड़ा दर्जा होता है सिद्दीक, और कितने सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाएगा, 72। अपनी लज्जत दुनिया को छोड़े, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, वहां चल बड़ा मजा आ रहा है, वहां चल बड़ा मजा आ रहा है, ये कर बड़ा मजा आ रहा है, ये कर बड़ा मजा आ रहा है। लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कों का भी यही हाल है, ये मजों के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी। कुछ दिन के मजे हैं फिर जिंदगी भर की करवाहट है, तो ये करवाहट बेचारा बर्दाश्त कर रहा है जो कर रहा है। तो जो लज्जत दुनिया और इनके ऐश और इशरत को छोड़ दिए और अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत की तरफ लेकर चले, नमाज इबादत नेकी परहेजगारी सच्चाई सुन्नतों पर अमल करना ईमानदारी इख्तियार करना ये सब लेकर चले, तो अल्लाह पाक उस खुश नसीब को 72 सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक और हदीस सुनिए, बेशक अल्लाह पाक अपनी मखलूक में उस खूबसूरत नौजवान को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जिसने अपनी जवानी और हुस्न जमाल को अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दिया। اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے کو فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اے میرے نوجوانوں، کہاں گھوم رہے ہو یار؟ آؤ نا مسجد میں آؤ، اللہ کی رضا مسجد میں ملے گی، اللہ کی رضا قرآن کی تلاوت میں ملے گی، اللہ کی رضا ماں باپ کی اطاعت میں ملے گی، اللہ کی رضا سنت پر عمل کرنے میں ملے گی، اللہ کی رضا عشق رسول میں ملے گی، اللہ کی رضا حب صحابہ اور اہل بیت میں ملے گی، اللہ کی رضا سجدے کرنے میں ملتی ہے، اللہ کی رضا سچ بولنے میں ملتی ہے، اللہ کی رضا ہمیں زمزم شریف پینے میں ملے گی، اللہ کی رضا کعبے کا طواف کرنے میں ملے گی۔ ارے شرابیں پی کر کیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہو؟ جوئے کھیل کر کیوں رب کو ناراض کرتے ہو؟ اور یہ رب کو ناراض کرنے والا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے اور خدا نہ خاصا ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یعنی کیا نوجوان، کیا نوجوان نہ ہو، ہم میں سے کئی ایسے مبتلا ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ کہتے یار ماحول ایسا ہے، تھوڑا سا انوائرمنٹ ایسا ہے، کچھ ادھر بہت مشکل ہے۔ کہاں کون بولتا ہے بہت مشکل ہے بھائی؟ کس نے کہہ دیا مشکل ہے؟ اسی سرزمین پر عالم بتاتا ہوں، اسی سرزمین پر مفتی بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو داڑھی والے بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو امام والے بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو زلفے والے بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں آپ کو ماں باپ کے اطاعت گزار بتاتا ہوں، اسی سرزمین میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بتاتا ہوں میں، اسی سرزمین میں تو ہے سارے، یہیں پر پلے بڑے، یہیں پر بون ہیں، یو کے بون۔ اب میں مانچسٹر میں ہوں نا، یو کے بون۔ یہ کیسے بن گئے؟ کیا انہیں یہ ہوائیں نہیں لگ رہی تھی؟ انہیں یہ فضائیں نہیں لگ رہی تھی؟ نہیں لگ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا، انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، ٹریک چینج کر دیا، یہ اس ٹریک پر چل گئے جو انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ اس ٹریک پر چلے جو جنت کا راستہ ہے تو انشاءاللہ سب ملے گا، ہم چلے کسی اور ٹریک پر اور تصور کرے کہ میں پہنچوں گا کسی اور منزل پر، ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ آپ نے جو ڈیسٹینیشن لیا ہے جنت، تو اس کا ٹریک رائٹ سائڈ پر ہے، آپ لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہو، کہہ رہے کہ جنت بھی مل جائے گی، ہم تو اس راستے پر چل کے جنت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آؤ پرہیزگاری کی طرف آئیں، ابھی وقت ہے، سانسیں باقی ہیں ہماری، ابھی گیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بندہ نیکی کرے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے، اللہ پاک اسے ایسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، آہا سبحان اللہ۔ بہت بڑے نوجوان نیک متقی بزرگ گزرے ہیں، حسین خوبصورت بزرگ گزرے، حسن و جمال بہترین حسن و جمال تھا، ان کا نام تھا حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مقام ابوا پر، ابوا کا مقام بڑا عمدہ مقام ہے، پتہ ہے کون سا مقام ہے؟ ابوا وہ مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بی بی آمنہ آرام فرمائے، مقام ابوا یہ وہ مقام ہے۔ وہاں اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، یہ حج کا سفر تھا نا، سفر حج کا تھا، تو حج کے دوران مقام ابوا پر خیمہ لگا کر حضرت سلیمان بن یسار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو ساتھی تھا بھی سفر میں کھانا کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گئے تھے، ایک برقع پہنے دیہاتی ولیجر عورت ان کے خیمے میں داخل ہوئی، چہرے پر نقاب تھا، تو جب اس نے نقاب اٹھایا تو اس کا بھی مطلب چہرہ دیکھ، وہ تو حسن و جمال والی عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، جوان تھی، آپ کو لگا کہ اس کو روٹی وغیرہ چاہیے ہوگی، مگر وہ روٹی کے ارادے سے نہیں آئی تھی، وہ آپ کے پاس گناہ کے ارادے سے آئی، سمجھ گیا آپ کے پاس، یہ کس ارادے سے آئی تھی؟ ایک نوجوان خوبصورت مرد کے پاس ایک نوجوان خوبصورت عورت آئی ہے، وہ گناہ کے ارادے سے آئی ہے، آپ میں خوف خدا پیدا ہوا، نوجوان ہیں خوبصورت ہیں، آپ کے خوف خدا سے لرس کر آپ نے فرمایا تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے، اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا مبارک سر جو تھا اپنے گھٹنوں میں داخل کیا اور با آواز بلندی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ये मंजर देखकर वो घबरा कर तेज तेज कदमों से भाग गई, चली गई। जब आप का साथी जो खाने का इंतजाम करने गया था, जब वो वापस आया तो देखा कि आप रो रो कर आपने अपनी आंखें सुजा दी हैं। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, चीख चीख करके आपका गला बैठ गया, इतना रोए खौफे खुदा में। उससे वजह पूछी कि भाई इतना क्यों रोए आप। शुरू में तो आपने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ज्यादा जोर दिया तो आपने सारी हकीकत रो रो कर बयान कर दी कि ये हुआ था, मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया। अल्लाह। अब जैसे उन्होंने अपना सारा वाकया सुनाया तो वो जो साथी था वो रोने शुरू हो गया। आपने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, क्या जवाब दिया उसने? उसने जवाब दिया मुझे तो ज्यादा रोना चाहिए था, क्योंकि आपकी जगह मैं होता तो शायद सब्र ना कर पाता। आपकी जगह मैं होता तो शायद सब्र ना कर पाता, यानी मैं उस गुनाह में पड़ जाता। दोनों हजरत रोते रहे यहां तक कि मक्के मुकर्रमा में हाजिर हो गए। तवाफ और सही वगैरह से फारिग होने के बाद हजरत सैयदना सुलेमान भी यसार अले रहमा हती में काबा में चादर से घुटनों के गिर घेरा बांधकर बैठ गए। इतने में ऊंग आ गई, हल्की सी नींद आती है ना, ऊंग आ गई। ख्वाब में पहुंच गए, एक हसीनो जमील हुस्नो जमाल के पेकर मोहतर मोहतर खुश लिबास दराज कद बुजुर्ग आपको ख्वाब में नजर आए। हजरत सैयदना सुलेमान भी यसार अले रहमा ने पूछा आप कौन है? जवाब दिया मैं अल्लाह का नबी यूसुफ हूं। अल्लाह का नबी यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो। अर्ज की या नबी अल्लाह, या अल्लाह के नबी, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो ख्वाब में कहने लगे कि जुलेखा के साथ आपका किस्सा बड़ा अजीब किस्सा है। वो वाकया भी बड़ा अजीब वाकया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया पता है? मक्का में अव्वा पर अराबिया के साथ होने वाला वाकया तुम्हारा अजीब डर है। यानी नबी को पता होता है ये शान यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मुस्तफा का आलम क्या होगा। तो आप गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, किस कदर ये खूबसूरत बात हमारे सामने आई कि जवानी में ये गुनाह आया, गुनाह चल कर आया। हम गुनाह के पास चल के जाते हैं, पब में चल के जाते हैं, कैसीनो में चल के जाते हैं, इस तरह के जो भी गुनाह पर अड्डे तो चल के जाते हैं। यहां तो गुनाह चल कर आया है और आप अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं, गिर गिरा रहे हैं। और इनाम देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर आपकी तारीफ फरमा रहे हैं। इस पुरफितन दौर में जो सरकार का सच्चा आशिक, आशिक रसूल, खुद को इन फितनों से बचाकर, गुनाहों से बचाकर, नमाजें पढ़कर, सुन्नतों पर अमल कर, एक मुट्ठी दाढ़ी सजाकर, सर पर इमामा सजा हुआ हो, चेहरे सर पर जुल्फे हो, नेकी का रास्ता हो, तिलावत करता हो, नेकी करता हो, इबादत करता हो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करता हो, आका आका करता हो, नारा लगाता हो, हर सहाबी ये नबी, और अल्लाह पाक के प्यारे हबीब को आखिरी नबी के पुकारता हो, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। इस इश्क रसूल में, मोहब्बत रसूल में, हुब रसूल में, अहले बैत की मोहब्बत में, असहाब रसूल की मोहब्बत में, औलिया करां की मोहब्बत में जी रहा हो, नाते पढ़ रहा हो, दुआएं कर रहा हो, तहज्जुद पढ़ रहा हो, इबादतें कर रहा हो, खुद को गुनाहों से फितनों से बचा रहा हो, माँ बाप है तो इनकी इताअत कर रहा हो, फरमा बरदारी कर रहा हो, अब्बू के कदमों में बैठ रहा हो, अम्मी के कदमों में बैठ रहा हो, इरशाद फरमाइए, हुक्म फरमाइए, मैं हाजिर हूँ, बीवी बच्चों की शरीयत के मुताबिक तरबियत कर रहा हो, सही कुरान पढ़ रहा हो, सही नमाज पढ़ रहा हो, सही इबादत कर रहा हो, पूरी ज़कात दे रहा हो, पूरे रोजे रख रहा हो, इस्तताअत होने पर, फर्ज होने पर हज कर रहा हो, ऐसा शख्स जरा सोचिए, मरने तो उसको भी तो है ना। जब वो मरेगा और जब कब्र में जाएगा और जब मुस्तफा करीम का जलवा देखेगा तो कितनी खूबसूरत अंदाज में मिलेगा, हुआ रसूलुल्लाह, ये तो मेरे रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है। आका अपना दीदार करा दे और हमारी रूह आका के जलवों में कुर्बान हो जाए। आमीन आमीन भी जाहिन नबी लबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का। खूब चर्चा करूं